महल के अंदर प्रवेश करूंगा और वहां जाकर मैं सीता की प्रतीक्षा करूंगा। अभी सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर है, इसलिए थोड़ा प्रकाश है और थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर अंधेरा, थोड़ा प्रकाश। इस स्थिति में अपने को थोड़ी समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और जब पूरी रात आ जाए तब इस प्रकार से अपने को लंका में प्रवेश करना है। ऐसे विचार करके वृषदंशक मात्रोत है, माने बहुत छोटे से हो, कोई तो कहते हैं बिल्ली जितने, और कोई कहते हैं कि छोटे से और भी छोटे से बच्चे बनकर हनुमान जी महाराज बिल्ली के बनकर के उसके ऊपर बैठे रहे। और उसके बाद हनुमान जी महाराज धीरे 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 शिक्षण करते हैं कि भगना पड़े, उनसे मार्ग बड़े अच्छे रहे इस प्रकार के। और क्या मन में इस बात,
उस प्रसंग से कथा को प्रारंभ करते हैं जब हनुमान जी महाराज समुद्र का लंघन करके लंका के वनांत प्रदेश में एक वृक्ष पर जाकर बैठ गए हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने इसका नाम सुंदरकांड दिया। वाल्मीकि जी के अनुसार वेदव्यास जी ने भी अध्यात्म रामायण में सुंदरकांड नाम रखा और वाल्मीकि जी के कारण ही गोस्वामी जी महाराज ने भी इसको सुंदरकांड कहा। सुंदरकांड का अर्थ है कि कांड बड़ा सुंदर है। इसका मतलब दूसरे कांड कोई सुंदर नहीं है क्या? दूसरे कांड भी सुंदर है अपनी जगह। बाल कांड है वो सुंदर है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, आगे युद्ध कांड है, अपनी जगह तो सभी सुंदर है। पर ये कांड का विशेषण सुंदर शब्द यहाँ विशेषता से दिया है, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? तो क्या तात्पर्य ये बात तो लिखने वाले जाने हैं, परंतु संतों से महात्माओं से सुना है कि ये सुंदरकांड है, ये सबकी सुंदरता बताता है। सब कांडों में होने वाली घटनाओं का सौंदर्य इस कांड में प्रकट होता है। सर्वप्रथम सीता का पातिव्रत्य है जो कि और जगह छिपा हुआ है लेकिन सुंदरकांड में प्रकट होता है। भगवान श्री राम का भक्तों के प्रति स्नेह कृपा ये भाव भी छिपा हुआ है लेकिन यहां विशेष प्रकट होता है। भगवान के भक्तों में हनुमान जी महाराज उनकी कार्य प्रवीणता माने कार्य के अंदर उनकी जो समझदारी है, कार्य करने की जो चतुराई है, उनका जो बुद्धि कौशल है, उनकी जो शूरवीरता है वो इसमें प्रकट होती है। कई बातें सुंदरकांड में प्रकट होती हैं, इसलिए सुंदरकांड को सुंदर कहा। सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरो हनु, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम्न सुंदरम। तो सुंदरकांड में जो बातचीत होती है वो भी बड़ी सुंदर होती है। संवाद इनके बड़े विलक्षण है जिन पात्रों के हैं, इसलिए सुंदरकांड की कथा सुनने से और सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे जीवन में आई हुई असुंदरता का नाश होता है। तो इसमें भी अलग अलग बातें हैं। हमारे सामने लौकिक बाधाएं आती हैं तो लोग सुंदरकांड के पाठ से लौकिक बाधाएं दूर करते हैं। अच्छा है, लौकिक बाधाएं जीवन में नहीं रहती हैं, मन प्रसन्न रहता है, चित्त में उत्साह रहता है तो परमात्मा की प्राप्ति की बातें हृदय में बैठती हैं। परंतु संत महापुरुष इसका और भी आगे उपयोग करते हैं कि हमारे कल्याण में कोई बाधा आती हो तो सुंदरकांड के पाठ करने से कल्याण की बाधा दूर होती है। जैसे अपने में अभिमान हो, अपने में क्रोध हो, तो काम क्रोध लोभ मोह ये कई विकार है, इन विकारों को दूर करने में सुंदरकांड का उपयोग करते हैं। सुंदरकांड के अंदर सीता जी का जो पातिव्रत्य है वे हमारे लिए बड़ा आदर्श है। पति के अभाव में पातिव्रत्य का भाव विशेषता से दिखता है, और वहां हनुमान जी जब सीता जी को इस प्रकार से रावण के सामने निडर निर्भय होकर धमकाती हुई दर्शन देती हैं, इससे सीता जी का प्रभाव विशेषता से दिखता है। तो ये सुंदरकांड माताओं बहनों के लिए भी बड़ा ही आदर्श कांड है, इसका पाठ करना चाहिए। बहुत सी माताओं बहनों के मन में ऐसा भाव आता है जैसा महाराज जी के सामने आता था, पत्र आता था प्रश्न के लिए, उसमें प्राय कहती माताएं बहने क्या सुबह सुंदरकांड करें कि नहीं करें। किसी के मन में ये आता कि सुंदरकांड का पाठ दोपहर के बाद करें, किसी के मन में आता कि सुंदरकांड का पाठ माताएं बहने भी कर सकती हैं क्या। ये सब बातें ऐसी ऐसी आती हैं कि इनसे मालूम देता है कि सुंदरकांड के विषय में कुछ भ्रम फैला हुआ है, और उसमें एक ये बात भी फैली हुई है कि सुबह हनुमान जी महाराज जल्दी श्री राम जी की सेवा में रहते हैं, इसलिए सुबह ही यदि हनुमान चालीसा करोगे, सुंदरकांड करोगे, तो श्री राम जी की सेवा में बाधा पड़ेगी। ऐसा वास्तव में है नहीं। हम लोगों के हनुमान जी का स्मरण करने से राम जी की सेवा में हनुमान जी बाधा करें, हनुमान जी की सेवा में कमी आ जाए, ऐसे हनुमान जी कोई कम सेवा वाले नहीं है, बहुत सेवा करते हैं राम जी की। हमारे द्वारा प्रातःकाल यदि स्मरण होता है तो बल्कि ये समझना चाहिए कि राम जी की सेवा हनुमान जी तो करते ही हैं, हनुमान जी की कृपा से हमको और राम जी की सेवा मिल गई, तो विशेषता से प्रातःकाल करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सेवा कर रहे हैं अब हमको भी सेवा मिलेगी। भगवान की सेवा तो भाई भगवान के सेवकों के पास है, तो भगवान के सेवक हैं वो सेवा हमको प्रदान करेंगे हमको, तो इसलिए हनुमान जी महाराज की जो है स्तुति करने में और सुंदरकांड के प्रातःकाल पाठ करने में या माताओं बहनों के पाठ करने में कोई आपत्ति नहीं, बड़े प्रेम से करना चाहिए। हनुमान जी महाराज एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए हैं लंका से सीधे आकर के, और उस वृक्ष पर बैठे बैठे वे बड़ी दूर से लंका को देखते हैं। अभी प्रकाश है, आकाश में चंद्रमा तो है लेकिन दिन का चंद्रमा है। देखो शुक्ल पक्ष में, अब आजकल आप देख लो बदल हो तो बात अलग है, नहीं तो जो है शुक्ल पक्ष में सूर्य के रहते रहते चंद्रमा दिखाई दे सकता है। तो उन्होंने देखा कि जब सूर्यास्त हो जाए, चंद्रमा पूर्ण पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाए, तब हम लंका के अंदर जाएंगे, अभी हम छोटा सा रूप बनाकर बैठ जाते हैं। तो वृष दंशक मात्र माने छोटे से बिल्ली जैसा रूप बनाकर, इतना रूप बनाकर बैठ जाते हैं। देखो हनुमान जी महाराज इतना ही रूप बना करके नहीं रहेंगे, चाहे जहां थोड़ा बड़े हो गए, कहीं छोटे हो गए, कहीं बड़े हो गए, कहीं छोटे हो गए, ऐसे कई रूपों में यहाँ आते रहेंगे। तो कभी प्रसंग के अंदर ये बात आए ना कि हनुमान जी का रूप देखा, तो देखेंगे भाई वो तो बिल्ली जैसा ही बने थे, ऐसा नहीं कि एक बार बिल्ली जैसा बनोगे सदा ही वैसा रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो एक शिखर के ऊपर वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर एक मजबूत तना है, उसके ऊपर हनुमान जी महाराज बैठ गए। हनुमान जी महाराज ने लंका की ओर
दृष्टिपात किया
कि ये लंका बड़ी सुंदर है, यहाँ के बगीचों के अंदर भी जो है बड़ी सुंदरता है। शरदकालीन बदलों के समान अत्यंत श्वेत वर्ण के यहाँ पर महल है और सागर के अंदर जो लहरों की ध्वनि आती है, घूम घूम ऐसे लहरों की ध्वनि आती है, वो लंका के अंदर आराम से सुनाई देती है। सागर की लगी हुई ठंडी ठंडी हवा, समुद्र की ठंडी हवा लंका वासियों को मिला करती है। लंका के अंदर बड़ी पुष्ट सेना है। लंका के दरवाजों के ऊपर बड़ी सुंदर चित्रकारी की गई है। लंका को चारों तरफ राक्षसों ने घेर रखा है और उसकी रक्षा की जाती है। लंका का चारों तरफ का परकोटा है वो सोने का बना हुआ है। लंका के ऊपर पताकाएं हैं, हर घर के ऊपर पताका, जिसमें महलों पर पताका, पताकाओं के अंदर घंटियां लगी हुई हैं। इन सब को देख करके हनुमान जी बड़े हर्षित भी हुए और विस्मित भी हुए। हर्षित तो इसलिए हुए कि यहाँ सीता रहती है, अब मुझको सीता के दर्शन हो जाएंगे। आश्चर्य होता है कि ये ऐसा इस नगरी का सुख इन पतितों को, इन राक्षसों को ऐसा सुख कैसे मिल रहा है। अतः विस्मयाविष्ट हृदय है और इधर आसाद्य सहसा हृष्ट है, दोनों भाव उनके अंदर पैदा हुए। और उस लंका के अंदर देखा उन्होंने कि कई कई जगह जो फर्शे हैं वो फर्शे वैदूर्य मणि के समान है और लोगों के महलों के ऊपर, रहने वाले महलों के ऊपर बड़ी चांदी के कलश लगाए गए हैं और लोगों के घरों के जो ये निसरणियां हैं, इन निसरणियों का बड़ा ही सुंदर ढंग से बनावट का रूप देखा जाता है। लंका के हर बावड़ी पर, हर तलैया पर हंसों का और चक्रवाकों का बड़ा सुंदर नाद हो रहा है। ऐसी लंका के अंदर आने के बाद हनुमान जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि ओहो, इस लंका में मैं जाने कैसे आ गया। वस्तुतः इस लंका में आना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ लंका के चारों तरफ राक्षस लोग परकोटों के ऊपर भी, परकोटे के बाहर भी बाण धनुष बाण लिए हुए इसकी रक्षा कर रहे हैं। हमारी सेना तो इस लंका तक आ नहीं सकती थी, कोई दो चार की कह नहीं सकता हूँ, जैसे कुमुद है, अंगद है, सुषेण है, ऐसे ऐसे, या ऋक्षराज है, बानर राज, ये ऋक्षराज दो है, एक तो रिंछो के राजा जामवंत जी, एक ऋक्षराज वे बाली के पिता, ये कोई आ सके तो आ सके, अन्यथा यहाँ तो कोई नहीं आ सकता है। राम और लक्ष्मण का पराक्रम तो बड़ा विचित्र है ही, इसमें संदेह की बात नहीं है। ये लंका तो वास्तव में अनेक रत्नों की खान है। यहाँ जगह जगह गोष्ठ बने हुए हैं और जिस प्रकार से प्रमदा का श्रृंगार होता है, स्त्री का श्रृंगार होता है, ऐसे लंका बड़ी श्रृंगारित की हुई है। और फिर वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वह बानर विचार करता है कि अभी चंद्रमा को और उदित होने देना चाहिए, तब तक मैं इसके दरवाजों की ओर विचार करता हूँ कि यदि हमारी सेना आएगी तो सबसे पहले कौन से दरवाजे पर आए, क्योंकि इसके चारों दरवाजे हैं। यह तो हो नहीं सकता कि चारों ही दरवाजे एकदम सब के सब, चारों ही दरवाजों पर बहुत मजबूत राक्षस हो, कहीं कहीं तो संभवतः कोई कमजोरी भी रह सकती है। इस प्रकार से वो देख रहे हैं, देखते 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 समुद्र के आगे, माने समुद्र से दक्षिण की ओर, समुद्र से दक्षिण की ओर जो उनको एक मार्ग दिखाई दिया, पिरोल दिखाई दी, उधर से उन्होंने सोचा कि मैं उधर से जाऊं या कैसे जाऊं। ऐसे विचार करके हनुमान जी महाराज ने देखा किसी मार्ग से न जाकर मुझे सीधा ही चलना चाहिए। अतएव हनुमान जी महाराज उस समय में सीधे परकोटे पर चढ़ गए। अच्छा, परकोटे भी एक नहीं थे, एक परकोटा है, फिर आगे परकोटा है, फिर आगे परकोटा है। तो उस परकोटे के ऊपर हनुमान जी महाराज चढ़ गए और उस समय में वहां पर लंकिनी थी, वो वहां पर बड़ी जो है सावधानी से सबको देख रही थी। तो हनुमान जी महाराज के सामने वो लंकिनी आई। कस्वाम, अरे तू कौन है, किस कार्य से आया है, तू इस वन के अंदर कैसे आया है, तुम अपना परिचय दो, जब तक तुम जीवित हो तब तक अपनी सब बात कह दो, फिर उसके बाद तुम किसको कहोगे, कौन सुनेगा, कहां जा रहे थे, जाते जाते तुम कहां आ गए, तुमको मालूम है कि नहीं ये रावण पालिता लंका है, कौन हो पहले अपना परिचय बताओ, न तो तुमको हम यहां से जाने देंगे न हम तुमको मारेंगे, पहले हम तुम्हारा परिचय पूछेंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो मैं आपको सब बात बता दूंगा, मैं अपना परिचय वगैरह सब बता दूंगा, परंतु आप यूं डरी हुई सी सहमी हुई सी कैसे हो, आप बड़ी शंकित दृष्टि से देखती हो, आपकी आंखें बड़ी खराब हैं, आपका मुंह बड़ा खराब है, आप इस प्रकार से ऐसा स्वरूप बनाने वाली आप कौन हो, आप चलते ही किसी से क्रोध से बात करते हो, प्रेम से भी तो आप हमको कह सकते हो। हनुमान जी के वचनों को सुनकर के अनेकों रूप बनाने वाली वो लंका और क्रुद्ध होकर के कहने लगी, तुम हमसे हमारा परिचय पूछते हो, तुमने राक्षस राज रावण का नाम सुना कि नहीं, उसकी आज्ञा से मैं यहाँ लंका की रक्षा में हूं, मैं उसकी आज्ञा हूं, मैं उसकी आज्ञा में हूं, और इस लंका की अधिष्ठात्री देवी, मेरा नाम भी लंका ही है, जैसे इस पुरी का नाम लंका है ऐसे मेरा नाम भी लंका है, मुझे लंका नाम इसलिए दिया है कि मुझ पर इसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी, रक्षा की जिम्मेदारी मुझे ही दी है, मेरा उल्लंघन करके कोई आदमी यहाँ लंका में जा नहीं सकता है, सर्वतः परिरक्षामि, मैं इस लंका की सब ओर से रक्षा करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये इतनी बात कही है क्योंकि मेरे पर लंका की जिम्मेवारी है। लंका के वचनों को सुनकर के उस समय हनुमान जी महाराज थोड़े बड़े होकर के हो गए, शैलैव अपर है, एक कोई पर्वत खड़ा हो गया हो ऐसे हनुमान जी महाराज शक्तिमान होकर पर्वत के समान हो गए। पर्वत के समान होकर विरूप लंकिनी को हनुमान जी ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ कहा, ए लंके, मैं इस तुम्हारी सारी नगरी को देखना चाहता हूं, लंकनी ध्यान रखो मेरे इस कार्य में किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, मेरे मन में लंका बड़ी अच्छी लगी है, इसको देखने का मेरे मन में भाव पैदा हुआ है, यहाँ के जंगलों को देखना चाहता हूँ, यहाँ के उपवनों को, बगीचों को देखना चाहता हूँ, एक वन होता है एक उपवन होता है, वन तो जैसे ये सब वन ही है और उपवन वो होता है जो जिन पेड़ों को पाला जाता है, जिन पेड़ों को बराबर सिंचित किया जाता है, और जो बगीचे वगैरह होते हैं वो उपवन होते हैं, तो यहाँ मुझे वन और उपवन कितने ये सब देखने हैं, और भी यहाँ मुख्य मुख्य घरों को मुझे देखना है, मैं इस लंका को देखने के लिए आया हूँ। लंकिनी ने फिर कहा, अच्छा तुमने बड़ा रूप बनाया मुझे डराने के लिए, और तुम खुले आम बोलते हो कि हम इस लंका को देखने के लिए आए हैं, मेरे यहाँ देखते देखते तुम ऐसा काम कर लोगे, नहीं नहीं निकल जाओ यहाँ से, पहले अपना परिचय देना पड़ेगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये लंका तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार से देखने योग्य नहीं है, पहले तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने उस निशाचरी से बड़े प्रेम से कहा कि देखो मैं इस लंका को देख लूंगा, पूरी लंका को देख करके चुपचाप चला जाऊंगा,
आप इस प्रकार से मुझे डांटिए मत, फटकारिए मत, और न कोई जोर से बोलने की बात है। आपके भय से मैं भयभीत होने वाला भी नहीं हूँ। अभी तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, लंका को चुपचाप देख के चला जाऊंगा और आगे आप मुझसे मत पूछिए। इतना सुनते ही वो लंकिनी तो जोर से भयंकर शब्द करने लगी और अपने हाथ से बानर की जोर से तमाचा मार दिया। तमाचा मारने के बाद हनुमान जी महाराज फिर क्या था, उनको मौका मिल गया। हनुमान जी महाराज ने उस लंकिनी को देख करके अपना मुक्का था, मुक्का उसके मुंह के ऊपर मार दिया और मुक्का मुंह पर मारते उसके सब दांत वांत सब बिखर बखा करके पूरे हो गए। और हनुमान जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा कि देख लंकिनी, तू जो है स्त्री है, इस कारण से मैं तेरा प्राण नहीं ले रहा, तेरा प्राण ले लूंगी, प्राण ले लूंगा। अब वो चिल्लाई और उसके मुंह से खून गिरा। खून गिरने के बाद उसका मुंह तो और भी विकृत हो गया। हनुमान जी को देख करके लंकिनी कहने लगी, अरे अरे बानर बानर, आज तो तूने ये मुक्का मार करके बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। ओहो, मैं कई दिनों से सोचती थी कि यहाँ कोई बंदर नहीं आया, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा नाम लंका है, मैं साक्षात यहाँ लंका की अधिष्ठात्री देवी हूँ। मुझ पर आफत आ गई, इसका अर्थ है कि ही बानर, सारी लंका पर अब आफत आने वाली है। तूने मुझे जीत लिया है, इसका अर्थ हनुमान तुमने सारी लंका को जीत लिया है। हनुमान, मेरे दांत तो टूटे, मेरे खून तो आया, लेकिन मेरे चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई है। हनुमान, देखो एक बार मैं तपस्या कर रही थी, मेरे सामने ब्रह्मा जी आए। मैंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, मैं बहुत सुंदर जगह रहना चाहती हूँ, सुरक्षित जगह रहना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि लंकिनी, विश्वकर्मा के द्वारा से बनाई हुई समुद्र के अंदर त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक लंका नाम की नगरी है, उस लंका नाम की नगरी में जाकर तुम सुरक्षित रहोगे। वहां ये कुबेर है, वो कुबेर रहता है, वहां पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, चले जाओ। देखो इस लंका का शासन तो बदलता रहेगा, आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम वहीं रहना। और जब वहां कभी एक बंदर आ जाए और वो बंदर तुम्हारे कभी प्रहार कर दे, तब समझना कि अब यहाँ राक्षसों का राज्य तो समाप्त होने वाला है और उसके बाद तुम्हारा भी कल्याण होने वाला है। तो मैं बहुत दिनों से सोचती थी, मैंने यहाँ कुबेर का राज्य भी देखा है, मैंने यहाँ रावण का भी राज्य देखा है। हे वानर, आज पितामह के वचन याद करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ है। स्वयंभू विहिता सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रम है। कभी पितामह ब्रह्मा झूठ थोड़े ही बोल सकते हैं। पितामह ने एक संकेत किया था कि रावण जब सीता नाम की स्त्री को यहां ले आए तब राक्षसों का विनाश होगा, तो तब तक तुम इस लंका में तुम रहो, तो मैं यहां अधिष्ठात्री देवी बनी हुई रह रही हूं। ऐसा करो हनुमान, मैं बताऊं जिस मार्ग से जाओ तुम, इस मार्ग से ऐसे जाओ और ऐसे जाकर के बड़ी बुद्धिमानी से जाना, सारी लंका नगरी को तुम अच्छी तरह से जान लोगी। और जान लेने के बाद हे बानर राज, ये नगरी बहुत जल्दी शोक के अंदर डूबने वाली है। और देखो तुम सीता की खोज के लिए आए हो ना? हाँ लंकिनी, सीता जी की खोज के लिए आया हूँ। हाँ, मुझे ब्रह्मा जी ने यही कहा था कि वो बानर सीता की खोज के लिए आएगा, तुम उसको सीता का मार्ग बता देना। देखो हनुमान, तुमको खुद को ही जाना पड़ेगा, हम तो तुमको लेके जा नहीं सकते हैं, तो तुम जाओ यहाँ से और जाकर के रावण के महल की तरफ उधर चले जाओगे, बाकी को देखने का कोई मतलब नहीं, सीता उस रावण के महल की तरफ ही है, उधर तुम चले जाओ। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंकिनी के द्वारा बताए हुए मार्ग से आगे जाने की सोच रहे हैं। आगे जाते हैं, परकोटा ही परकोटा है, कहीं दरवाजा दिखाई नहीं दिया। और जहां दरवाजा है वहां पर एक अत्यद्भुत प्रकाश किया हुआ है, बड़ा विलक्षण प्रकाश, क्योंकि प्रत्येक दरवाजों के ऊपर कई प्रकार के यंत्र लगाए हुए हैं। उन यंत्रों का कारण यह है कि चारों तरफ परकोटा होने के कारण से उन दरवाजों पर यंत्र लगाए हैं, ताकि समय पर उन यंत्रों से आने जाने का मार्ग मिल जाए और समय पर वो किवाड़ बंद भी हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि यहाँ राक्षस लोग ज्यादा सावधान हैं। आते हुए हनुमान जी महाराज रात्रि के समय में एक पुदकी लगा करके उछक करके वे फिर प्राकार पर चले गए, परकोटे पर चले गए। परकोटे पर आने के बाद अब उनको लंकिनी ये लंका रात्रि में जैसा लंकिनी ने बताया था वो लंका एकदम जगमगाती सी भी दिखाई दी, बड़ी सुंदर लंका दिखाई दी। रात्रि के समय में यहाँ राक्षस लोग अपने घरों के अंदर बड़ा कल्लोल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और कोई किन्नी किन्नी घरों में कोई गाना हो रहा है, कहीं नाच हो रहा है, ऐसे ऐसे बड़े आनंद के उत्सव लंका में मनाए जा रहे हैं। लंका के अंदर राक्षसों के घरों में कई प्रकार की बदबू भी आ रही है, क्योंकि वहाँ उनके अखाद्य भोजन वहाँ बन रहे हैं, उनकी गंदगी भी, उनकी गंदी वायु भी उनको जो है सुनने को सूंघने को मिल रही है। ऐसे चलते चलते वे सुग्रीव का हित करने वाले बानर राम जी का कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे हैं। भवनात भवनम गच्छन, कभी किसी भवन पर जाते हैं और उस भवन पर बैठ करके वहाँ के सबको देखते हैं, फिर पास वाले भवन पर चले जाते हैं, फिर उस पास पर चले जाते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के आकृति वाले मकानों पर जाते जाते हैं। वे वहाँ रावण के महल की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं पर उनको कांची निनदम नूपुराणाम, नाचने के कारण से नूपुरों की जो आवाज है वो विशेषता से सुनने को मिलती है। कहीं पर मजाक भरी बातें होकर बड़ा जोर से अट्टहास मिल रहा है। कहीं कहीं राक्षसों के घरों के अंदर मंत्रों का जाप हो रहा है। कहीं कहीं पर स्वाध्याय हो रहा है। कहीं कहीं पर जो है वो राजमार्ग के ऊपर खड़े हुए लोग, राजमार्ग कहते हैं सड़क वगैरह, वहां पर चलने वाले लोग रावण की महिमा गाते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़कर के देखा कि रावण के यहाँ बड़े विचित्र गुप्तचर हैं। वे गुप्तचर बड़ी शिक्षा लिए हुए हैं, ऐसी दाढ़ी बनाए हुए हैं, कई एकदम मुंडित हुए हुए हैं, किन्होंने काला मृगचर्म पहन रखा है, किन्होंने साधु सन्यासी का रूप बना रखा है, किसने अपने हाथ में कमंडल ले लिया और सिर के ऊपर लंबे बाल रख लिए, और जो ऐसे चल रहे हैं जैसे वो कोई ध्यान में मस्त हो, असल में उनको गुप्तचरी करनी है। और कई ऐसे हैं कि गुप्तचर चल रहा है आगे, उसके पीछे सेना चल रही है, गुप्तचर को मालूम है कि मेरे पीछे सेना है, और सेना वहां को मालूम है कि हम गुप्तचर के साथ है, लेकिन और आदमी सोचते हैं कि सेना तो अपने ढंग से जा रही है, गुप्तचर अपने, ये कोई आदमी कोई दूसरा ही है, वो अपने ढंग से जा रहा है, ऐसे गुप्तचर लोगों को मालूम नहीं दे रहे हैं। उन गुप्तचरों के अंदर भी कोई तो एक आंख वाला है और कोई जो है अनेक वर्ण वाला है, कोई लंबोधर पयोधरान, कोई जिसका पेट खूब बड़ा है, ऐसे रावण के गुप्तचर है, और कोई कोई ऐसे हैं जिनका पेट एकदम छाती पीठ से छिपा हुआ है, किन्हीं का मुंह खराब है, किन्हीं की आंखें बड़ी खराब है, माने शरीर से जितने लाचार और अयोग्य व्यक्ति हैं, वे वहां सब गुप्तचरी का काम करते हैं, ताकि लोग ये न समझे कि ये भी कुछ क्रियाशील है। जैसे दोनों पैर जिसके नहीं है वो वहां पर पड़ा ही है, लेकिन पड़ा पड़ा सब प्रकार की गुप्तचरी करता है। धन विनय खड्गिनश चैव, बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले, तलवार धारण करने वाले, परिघ धारण करने वाले, ऐसे ऐसे सैनिक लोग उनके इशारे पर रहने वाले हैं। सैनिक लोग हैं, उनका शरीर बड़ा सुदृढ़ है, न तो वे अति स्थूल है, न अति कृश है, न अति लंबे है, न अति ह्रस्व है, न अति गोरे है, न अति काले है, और न वो बहुकुरूप है न विरूप है। इस प्रकार से सैनिक लोग बड़े स्वस्थ हैं और हनुमान जी ने देखा कि यहाँ सैनिकों के अंदर आपस में पूरा का पूरा तालमेल बैठा हुआ है। लोगों को देखा कि यहाँ के लोग अर्थात यहाँ के